से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ, मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ, मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ।
ओम शांति। आज का विषय बड़ा सुंदर है और आज का विषय अशरीर स्थिति से समस्याओं का समाधान, यही टोटल हमारा ज्ञान का सार है। हम यहां आए हैं, किस लिए आए हैं? अशरीरी बनने के लिए। आज की मुरली भी इसी के ऊपर थी और ये सत्युग था, बहुत अच्छा दुनिया थी। क्यों थी? क्योंकि वो सभी आत्माभिमानी में रहते थे, अशरीर स्थिति में थे, इसीलिए प्रकृति भी अच्छी थी, सभी में दैवी गुण थे। लेकिन उस सत्युग से कलयुग क्यों बना? उसका कारण है देहभान। आज शिव बाबा परमधाम से आए हैं, हमारे लिए चार सब्जेक्ट रखे हैं देवता बनाने के लिए, और उन चार सब्जेक्ट का रिजल्ट भी क्या है? चाहे हम ज्ञान ले रहे, किस लिए ले रहे? ज्ञान ले रहे हैं अशरीरी बनने के लिए। मेरे पास ज्ञान बहुत है, मैंने आज तक बहुत मुरलियां सुन ली, नॉलेज फुल बन गया हूं, इसका रिजल्ट अशरीर स्थिति। अगर मेरी अशरीर स्थिति नहीं रहती, मैं विधेय स्थिति में नहीं रह सकता हूं, इसका मतलब ज्ञान की सब्जेक्ट की कमी है, इसलिए मुझे ज्ञान की सब्जेक्ट की स्टडी करनी होगी, चाहे मुरलियों की स्टडी, चाहे बार बार उसको रिविजेशन करना पड़ेगा, उसका चिंतन मंथन करना पड़ेगा, वो चिंतन मंथन के स्वरूप में रहना पड़ेगा, तब जाकर के अशरीरी बनेंगे। तो ज्ञान का विषय मेरा बहुत अच्छा है, रिजल्ट में अशरीरी स्थिति। मैं योग बहुत अच्छा लगाता हूं, चाहे अमृत वाला का, चाहे क्लास के पहले वाला, मेरा योग बहुत अच्छा लगता है, निशाने अशरीरी स्थिति। अगर मैं योग लगाने के बाद एक घंटा तक बैठ गया लेकिन फिर भी अशरीरी नहीं बना, इसका मतलब योग में बुद्धि कहीं भटक रही थी, मन भी कहीं भटक रहा था, इसका मतलब मैं जो योग कर रहा हूं नियम अनुसार बैठ जाता हूं, लेकिन जहां मेरा मन जाना चाहिए, जहां मेरी बुद्धि जाना चाहिए, जिससे मैं चार्ज हो जाता हूं, वो नहीं है। तो योग का रिजल्ट भी अशरीर स्थिति है। आज मैं धारणा करता हूं, मैं पक्का श्रीमत प्रमाण चल रहा हूं, जो भी बाबा के श्रीमत मर्यादा सबका पालन कर रहा हूं, खान पान की धारणा बहुत अच्छी है, पवित्रता की धारणा भी बहुत अच्छी है, रिजल्ट में क्या है? अशरीर स्थिति। ये धारणा का सब्जेक्ट भी बाबा ने क्यों रखा है? उन धारणाओं पर पक्के जो चलने वाले हैं वो अशरीरी जरूर बनेंगे। अगर मैं अशरीरी नहीं बनता हूं, इसका मतलब मेरे धारणा में कहीं ना कहीं, चाहे खान पान की धारणा है, चाहे फिर सूक्ष्म धारणा है, उन धारणाओं में कमी है। चौथा सब्जेक्ट जो सेवा का है, हमने इस सेवा आज तक बहुत सारी की है और सेवाओं के द्वारा मुझे बहुत सारी दुआएं मिली है, रिजल्ट में अशरीर स्थिति। सेवा करने के बाद फिर भी उस सेवा में टकराव है, सेवा में मैपन है, सेवा में दिखावटी है, अशरीरी नहीं बन पाएंगे, वो सेवा झंझट वाली सेवा रहेगी। इसलिए चारों सब्जेक्ट जो बाबा ने रखे हैं वो अशरीरी बनने के लिए रखे हैं। तो इसीलिए हमें चेक करना है अशरीरी हम बनते हैं, यह हमारा पहला और अंतिम लेसन है। और यह अशरीरी नहीं होने के कारण आज जीवन में विभिन्न प्रकार के प्रॉब्लम्स है। वास्तव में समस्या आएगी, लेकिन जो समस्या का समाधान ढूंढता है, जो जीवन की समस्या का समाधान ढूंढता है, वही उन्नति की तरफ जाता है। समस्या आएगी और उसका खुद समाधान ढूंढना है, समस्या से पलायनमान नहीं होना है। और जिसके जीवन में अधिक से अधिक समस्या आएगी उतना ही उसका सत्युग का पद भी ऊंचा है। इसलिए समस्या से घबराना नहीं, लेकिन उन समस्याओं का समाधान के लिए स्थिति कौन सी चाहिए? अशरीर। वो समस्या उनको लगती है, जो समस्या भारी उनको लगते हैं जो अशरीरी स्थिति में नहीं रहते। फिर दूसरे के ऊपर थोपेंगे, ये ऐसा है, ये इसी बात है, ऐसा ये है। उस समस्या से और भी हम परचिंतन करते रहेंगे, निगेटिव चिंतन करते रहेंगे, समस्या से और घबराते रहेंगे। और जिसके कारण उस समस्या निर्माण करने वालों के प्रति दृष्टिकोण निगेटिव, उस समस्या के प्रति हमें भारी लगते हैं। और इसीलिए बाबा कहते बच्चे अशरीरी बनो। अशरीरी स्थिति समस्या रूपी आग से निकलने का सहज साधन है। समस्या चाहे विभिन्न प्रकार की समस्या है, लेकिन कितनी भी समस्या है, लेकिन उससे बचने का साधन है अशरीरी स्थिति। इसलिए बाबा कहते बच्चे इस अशरीरी स्थिति का अभ्यास करो, इसका अनुभव करो, यही हमारी तपस्या है, यही हमारी साधना है। जिन्होंने इस साधना के तरफ ध्यान नहीं दिया है, उस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए अलग अलग मार्ग अपनाते हैं, दूसरों को सुना रहे हैं, या वो जो समस्या निर्माण करता वहां से दूसरे और जा रहे हैं, वो कोई समाधान नहीं है। लेकिन उसी जगह पर रह करके भी हमें अशरीरी बन करके उस समस्या का समाधान ढूंढना है, और उसकी वहां उन्नति होगी। यह है प्रगति का साधन। कोई भी प्रकार की समस्या का हल है अशरीरी स्थिति। इसलिए बाबा कहते बच्चे इस स्थिति को अपनाओ। आज बाबा ने जो मेहनत की, ब्रह्मा बाबा ने कौन सी मेहनत की? ये अशरीरी बनने की, आत्माभिमानी स्थिति की, आत्मा हूं इस पाठ को पक्का करने की मेहनत बाबा ने बहुत की। और आज हम इस मेहनत से थोड़ा सा उस मेहनत को करते ही नहीं, बाकी और मेहनत करते हैं। जो ये अशरीरी स्थिति की मेहनत नहीं करता, उसको हर क्षेत्र में, हर बातों में मेहनत लगती है। योग में मेहनत लगेगी, सेवा में मेहनत लगेगी, धारणाओं में मेहनत लगेगी, संस्कार परिवर्तन करने में मेहनत लगेगी। तो इसीलिए अगर सभी मेहनतों से छूटना है अशरीरी स्थिति का अभ्यास, इसलिए अशरीरी स्थिति से ही हम जीवन की हर प्रकार की समस्या का समाधान करेंगे। और अभी तक कोई कुछ नहीं, आगे चल करके अनेक समस्या आने वाली है। भाव स्वभाव संस्कार की भी समस्या आती रहेंगी, प्राकृतिक समस्या भी आती रहेंगी, विकारों के तरफ की भी समस्या आती रहेंगी। अगर जिन्होंने ये मेहनत नहीं किया, उनके लिए आगे फिर और मुश्किल लगेगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे ये मेहनत करो, इसका पुरुषार्थ करो। ये है पुरुषार्थ, क्योंकि इसी पुरुषार्थ से, अशरीरी बनने से हम फरिश्ता बनने वाले हैं। जो अशरीरी का अभ्यास करता है अशरीरी बनता है वो हल्का रहता है, जो हल्का रहता है उसको कहेंगे फरिश्ता। वर्तमान समय के चार सब्जेक्ट ये हमारी स्टडी, इसका रिजल्ट अशरीरी स्थिति फरिश्ता। तो ब्राह्मण जीवन हमारा पुरुषार्थ है, पढ़ाई है, इसकी डिग्री है फरिश्ता और इसकी नौकरी है देवता। देवता बनना अर्थात नौकरी करना। लेकिन जिन्होंने ये अशरीरी की मेहनत नहीं की है उसको फरिश्ता की डिग्री नहीं मिलेगी, और जिसको डिग्री नहीं मिलेगी, जैसे कॉलेज स्कूल में पढ़ते डिग्री नहीं है, ऐसा नहीं कि वो भूखा रहता है, नौकरी तो मिलेगी लेकिन कहीं ना कहीं छोटी मोटी मिल जाएगी। इसी तरह जिन्होंने अशरीरी स्थिति की मेहनत नहीं की है उसको सत्यु का पद भी, सत्यु में तो जाएंगे क्योंकि स्टडी किया है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है, लेकिन पद कुछ ऐसा वैसा मिल जाएगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे सत्यु के पद का आधार भी यह अशरीरी स्थिति है। तो इसलिए हमें इस अशरीरी स्थिति से जीवन में आने वाले विभिन्न प्रकार के समस्याओं का समाधान करना है। जो ये अशरीरी की मेहनत नहीं करते उनके जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आते हैं, और वो समस्या वर्तमान समय ब्राह्मणों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आज एक समस्या आई फिर कल दूसरी आएगी, उसको समाधान करो कल तीसरी आएगी, कल चौथी आएगी, और जो ये समस्या में लगा रहता है, जिसका इस समस्या का चिंतन कर चलता है, वो आत्म चिंतन, परमात्मा चिंतन, ज्ञान का चिंतन, मनन चिंतन नहीं करता, वो कर्मयोगी नहीं बन सकता। इसलिए बाबा कहते बच्चे जीवन की समस्या का समाधान यह अशरीरी स्थिति का अनुभव। तो जीवन में आज वर्तमान में ब्राह्मणों में क्या क्या समस्या है? सबसे पहली समस्या है संस्कारों की समस्या। खुद के संस्कार नहीं बदलते तो कईयों को लगता है हम इतना दिन ज्ञान में चल रहे हैं, योग भी लगाते हैं, धारणा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो भी ये मेरे अंदर के जो संस्कार आए बीच बीच में फिर से रिपीटेशन हो रहे हैं, क्या करूं? सब कुछ है, ज्ञान है, योग है, धारणा है, सब है, लेकिन फिर भी ये संस्कार क्यों आ रहे हैं? ये हर एक कई लोगों की समस्या है, और उसके कारण कभी कभी उदास हो जाते हैं, असंतुष्ट हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, लगता है ये मार्ग बड़ा, बाबा ने तो कहा है सहज मार्ग है, लेकिन ये सहज मार्ग बहुत कठिन है, माया को जीतना बड़ा मुश्किल है, ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उन्होंने अशरीरी की मेहनत नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो संस्कारों के वशीभूत हो रहे हैं। जो अशरीरी स्थिति में रहता है उसको अतींद्रिय सुख मिल जाता है, और जिसको ये अतींद्रिय सुख मिल जाता है, जैसे किसने अगर जलेबी खाई उसके सामने मुरमुरा रखो अच्छा लगेगा? इतनी अच्छी चीज खाई तो उसके बाद मुरमुरा फीका लगेगा? इसी तरह जिन्होंने इस अशरीरी स्थिति की मेहनत की है, अतींद्रिय सुख प्राप्त किए हैं, वो कोई भी संस्कारों के वश नहीं होगा। आज हमारी बुद्धि या मन कोई भी बातों के प्रभाव में क्यों आता है? क्योंकि आत्मा को सुख चाहिए, चाहे योग के द्वारा लो, अगर योग के द्वारा अशरीरी स्थिति के द्वारा नहीं लेंगे तो सुख के लिए तो प्यासी हैं, तो कहीं ना कोई क्षणिक विकारों के संस्कारों के वश हो जाते हैं और जिससे फिर सुख लेने का प्रयास करते हैं। तो आज संस्कार के वश क्यों हो रहे हैं? इसका मतलब मैंने अशरीरी का अनुभव नहीं किया है, और अशरीरी स्थिति में न होने के कारण प्रभु मिलन का आनंद नहीं आ रहा है, और जिसके कारण न चाहते हुए भी वो संस्कार के वश हो रहे हैं। तो आज संस्कार परिवर्तन क्यों नहीं हो रहे उसका कारण है अशरीरी स्थिति की कमी। तो इसीलिए मुझे अगर संस्कार परिवर्तन की जो समस्या है उसको खत्म करना है, उसके लिए अशरीरी स्थिति की मेहनत करनी है। अशरीरी के सामने कड़े ते कड़े संस्कार भी परिवर्तन होते हैं, कितना भी आपके अंदर कड़ा संस्कार हो, कैसा भी विकार हो, अगर संस्कारों को परिवर्तन करना है तो ये मेहनत हमें करनी है। तो संस्कार परिवर्तन की समस्या के लिए समाधान क्या है? अशरीरी स्थिति। जो अशरीरी स्थिति में रहता है, अशरीरी स्थिति में रहने से जैसे कहा कि अतीन्द्रिय सुख मिल जाता है, और अतीन्द्रिय सुख में वाला कोई भी संस्कार के वश नहीं हो सकता, माया उसको छू भी नहीं सकती। जहां आग है वहां कोई भी जानवर नहीं आता, ना कोई उस घर में भूत रहता है। जहां लाइट जल रहे हैं वहां कोई भूत भी नहीं रहता। भूत कहां रहता है? जहां अंधेरा है। जहां अंधेरा है वहां भूत रहता है। इसी तरह अगर मैंने शरीर रूपी घर में यह आत्मा का दीपक नहीं जलाया है, अशरीरी स्थिति का अनुभव नहीं किया है, और विकार रूपी भूतों को भगा रहे, कैसे जाएगा वो? इसीलिए अगर विकारों को भगाना है तो इसीलिए हमें क्या करना है, इस शरीर रूपी घर में आत्मा का दीपक अशरीरी स्थिति का अनुभव करते रहना है। और जो अशरीरी स्थिति में रहता है निरंतर, वो जन्म जन्मांतर के उसके विकर्म विनाश होने की फैक्ट्री वो अंदर से चल रही है। अशरीरी स्थिति में रहता है वो कभी नहीं कहेगा मुझे योग लगाने के लिए, मुझे पुरुषार्थ के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। वो निरंतर कर्म कर रहा है तो भी बाबा से उसका योग जुड़ा हुआ है। कर्म कर रहा है, रात को सो रहा है तो भी उसका योग लगा हुआ है। अशरीरी स्थिति में रहने वाला उसने सब कुछ समेटा हुआ है, उपराम है, वह रागी है। तो इसलिए इस स्थिति में रहने से खुद के जो जन्म जन्मांतर के कैसे भी संस्कारों की समस्याएं उसका समाधान हो जाएगा। इतना ही नहीं, दूसरी कौन सी समस्या है? आपस के कभी कभी संस्कारों में टकराव हो जाता है, कहते इसकी मेरी बनती नहीं, इसके साथ मेरी टकराव हो जाता है। तो ये टकराव क्यों होता है? टकराव का कारण है देहाभिमान। जो आत्माभिमानी वाला है अशरीरी स्थिति में रहता है, भले टकराव की बातें आएंगी, परिस्थिति आएंगी, लेकिन वो झुक जाएगा, वो उन बातों को सहन करेगा, वो अपने संकल्प विकल्प नहीं चलाएगा। तो भाव स्वभाव संस्कार की परिस्थिति में भी ऐसी समस्या का भी समाधान है अशरीरी स्थिति। अगर मेरे किसी के साथ बनती नहीं, उसके अंदर के अवगुण नजर आते हैं, अवगुण उन्हीं को नजर आते हैं जो देह भान में रहता है। अशरीरी स्थिति में रहने वाला कोई कैसा भी हो, लेकिन उसको लगेगा यहां रहना, इसके साथ रहना, यही मेरे उन्नति का साधन है। और जो देहभान वाला है वो क्या करेगा? वहां से किनारा करेगा। उसको लगेगा कि मैं इनके साथ रहूंगा तो मेरी उन्नति नहीं होगी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, भाव स्वभाव संस्कारों की माया का कारण है देहभान। इसलिए अशरीरी स्थिति में जो रहता है उसको भाव स्वभाव संस्कार की माया से भी वो, उस हलचल से भी वो मुक्त रहेगा, वो व्यर्थ चिंतन पर चिंतन नहीं करेगा, उसका चिंतन ही नहीं चलेगा, उसको अंदर से अतीन्द्रिय सुख मिल रहे हैं, इसीलिए ऐसी बातें उसको टच भी नहीं करेगी। तो भाव स्वभाव संस्कारों में अगर हमें अचल अडोल रहना है, लोगों के तरफ से आने वाली समस्या से हमें समाधान स्वरूप में रहना है। यह अशरीरी की तप स्थिति जरूरी है, क्योंकि जो अशरीरी स्थिति में रहता है, अगर ऐसी कोई बातें आती भी है, उसको लगता है कि मेरा कई जन्म जन्मांतर का हिसाब किताब सुप्त हो रहा है। हो सकता है इस व्यक्ति के साथ मैंने भी कभी ऐसा किया होगा, मैंने भी ऐसा व्यवहार किया है, तो मेरा सुप्त हो रहा है। वो ये समझ करके वो चलता रहेगा, आगे बढ़ता जाएगा। और जिसको देह भान है, उसको लगेगा कि मैं इसके साथ इतना अच्छा व्यवहार करता हूं, मैं इसके साथ बहुत अच्छा रहता हूं, फिर भी ये ऐसा क्यों है। वो खुद भी चिंतन करेगा, औरों को भी बताएगा, और उसे समाधान ढूंढने की कोशिश करेगा। वो कंप्लेन करेगा, औरों को कंप्लेन करेगा। बाबा ने कहा ना, कंप्लेन करने वाला कभी कंप्लेंट नहीं बन सकता। और ये कंप्लेन वही करता है जो देह भान में है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, देही अभिमानी बनो। हर व्यक्ति आपको प्यारा लगेगा, हर व्यक्ति का पार्ट आपको अच्छा लगेगा। भले कोई गाली भी दे, कोई इंसल्ट भी करे, तो भी देही अभिमानी वालों को वो अच्छा लगेगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, भाव स्वभाव संस्कार की समस्या का भी समाधान है अशरीरी स्थिति। तीसरी है योग की समस्या। अब कईयों को लगता है मेरा योग लगता ही नहीं, पता नहीं क्या होता है, मेरा योग लगता ही नहीं। कर्म योग की भी समस्या, और जो बैठ करके योग लगते करते उसी से भी समस्या। कहते बुद्धि भटकते हैं। क्यों भटकते हैं? जो सारा दिन देह भान में रहता है, और देह भान में रहने के कारण उसने सारा दिन जो भी देखा है, जो भी सुना है, जो भी उसका उस कर्म क्षेत्र पर अपमान हुआ है, किसी ने सम्मान नहीं दिया है, इंसल्ट किया है, वो बातें उसके दिल में लगी है, सारा दिन उसका चिंतन चला है। और जब योग में बैठता है, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेगा मैं आत्मा हूं शांत, फिर कहेगा मेरे को उन्होंने क्यों बोला, फिर कहेगा कोई बात नहीं मैं आत्मा, फिर कहेगा 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेगा कोई बात नहीं मैं आत्मा हूं शांत स्वरूप, फिर कहेंगे आखिर कब तक सहन करना है। तो उन्हीं बातों का ही चिंतन चलेगा, वो उसको ज्ञान का चिंतन, मनन चिंतन। तो आज योग के जो प्रॉब्लम्स हैं, ये योग में जो समस्या आई, क्यों? ये अशरीरी स्थिति की अनुभूति सारा दिन नहीं रही, सारा दिन अशरीरी नहीं रहे, और जिसके कारण किसने अपमान किया, निंदा की, ग्लानि की, उन बातों को दिल में रख दिया, बुद्धि में वो बातें लग गई, और इसीलिए ये समस्या योग की समस्या लगी। ना कर्म योगी है और ना बैठक योगी है। इसीलिए अगर योग में जब भी बैठते तुरंत योग लग जाए, योग में कोई भी प्रकार का सारा दिन जो देखा है, सुना है, उन बातों का चिंतन ना चले। इसीलिए सारा दिन हमें इस अवस्था में रहना है। कहते ना, जो योगी है मान अपमान निंदा स्तुति में भी समान रहता है, लेकिन कौन रह सकता है जो सारा दिन अशरीरी स्थिति में रहता है। इसलिए योग के अंदर अगर आपकी बुद्धि भटकते है, मन भटकता है, इसका कारण है आप सारा दिन अशरीरी स्थिति में नहीं रहते। इसलिए इस अशरीरी स्थिति को बढ़ाओ, तो ऑटोमेटिकली आपका योग बड़ा अच्छा लगेगा, कर्म योग भी लगेगा, और बैठ करके योग लगाएंगे वो भी लगेगा। चौथी है, कभी कभी वृत्ति चंचल हो जाती है, दृष्टि चंचल हो जाती है। ये दृष्टि वृत्ति चंचल क्यों हो जाते हैं? उसका कारण है अशरीरी स्थिति की कमी। क्योंकि जो अशरीरी स्थिति में रहता है, वो अपनी आत्मा को देखता है, और जिसको अपनी आत्मा नजर आते है, उसको परमात्मा भी सूक्ष्म में नजर आता है, और जिसको अपनी आत्मा नजर आ रहे, परमात्मा नजर आ रहे, उसका ध्यान किसी के भी देह के ऊपर नहीं जाएगा। वो दूसरे को भी आत्मा रूप में ही देखेगा। और जिसके कारण वृत्ति और दृष्टि की जो चंचलता है वो खत्म हो जाती है। इसीलिए अगर वृत्ति मेरी चंचल हो जाते, दृष्टि चंचल हो जाते, इसका कारण है मेरा देहभान। इसीलिए अगर वृत्ति और दृष्टि चंचल हो जाते, इसका मतलब है मेरी शारीरिक स्थिति की कमी है, तो मुझे उसका अभ्यास करना है। और जब ये अभ्यास करेंगे उस समस्या का समाधान होगा, उसके लिए और कोई समाधान नहीं है। तो इसलिए अशरीरी स्थिति से दृष्टि वृत्ति की चंचलता की समस्या को हमें क्या करना है, खत्म करना है। पांचवी समस्या है स्वराज्य अधिकारी स्थिति नहीं रहती। हम चाहते हैं मुख से व्यर्थ ना बोले, आंखों से व्यर्थ ना देखे, कानों से व्यर्थ ना सुने, तो भी ये इंद्रियां हमारी नहीं सुनती। क्यों नहीं सुनती? जो अपने अशरीरी स्थिति में नहीं रहता, भ्रुकुटी की आसन पर नहीं बैठता, उसका कोई नहीं सुनेगा। अगर मेरी स्वराज्य अधिकारी स्थिति नहीं है, मेरी इंद्रियां मेरी बातें नहीं मानती, इसका मतलब मैं अशरीरी स्थिति में नहीं हूं। अगर कोई चेयर पर नहीं बैठता तो उसका कोई कहना भी नहीं मानता। इसलिए मुझे क्या करना है, सारा दिन अपने भ्रुकुटी के सिंहासन पर हूं, मैं अशरीरी हूं, इस मूर्ति में जो रहता है उसकी इंद्रियां उसके वश में रहते हैं। अगर यहां मैं स्वराज्य अधिकारी नहीं बना तो फिर भविष्य का राजा कैसे बनूंगा? राजा बनने के लिए हम कितने सेवा किए, कितना लोगों को ज्ञान सुनाया, वो नहीं है महत्व का, लेकिन मैंने अपने इंद्रियों के ऊपर शासन कितना किया, ये बाबा देखेगा। बाबा ने राजा बनने के लिए ये नहीं कहा कि आप कितना साल से ज्ञान में हैं, अपने मम्मा बाबा को देखा या नहीं देखा है। ये नहीं बाबा देखेगा, लेकिन आप जब से ज्ञान में आए अपने इंद्रियों पर शासन आपने कितना किया है। क्योंकि फार्मूला है राजा बनने का, स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। तो अगर मुझे भविष्य का राजा बनना है तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने कर्मेंद्र का राजा बनना पड़ेगा। और कर्मेंद्र का राजा वही बन सकता है जो अशरीरी अवस्था में रहता है, जो अशरीरी स्थिति में रहता है। इसलिए ये अशरीरी की बातें जिसको बाबा कभी कभी, जैसे दादी ने सवेरे कहा ना, बाबा कभी आत्माभिमानी बनो, कभी विधेयी बनो, कभी अशरीरी बनो, बिंदुरूप बनो, इस बात को हर मुरली में बाबा कहते हैं। क्योंकि ये हमें मूल अभ्यास है और इसके लिए, ये बनने के लिए अलग अलग लेसन है। ड्रामा का लेसन, 84 जन्मों की कहानी, परमधाम का ज्ञान, ये टोटल जो बाकी जो बीच के लेसन है, ये आत्माभिमानी बनाने के लिए, अशरीरी बनाने के लिए, स्मृति स्वरूप बनने के लिए है। इसलिए यही हमारा अंतिम लेसन है। तो एक यही लेसन हमें पक्का करना है और इसी लेसनों से बाकी सब बातें आ जाएगी। इसलिए हमें क्या करना है, इसकी ही धुन लगानी है। और जिस धुन के द्वारा, जिस अशरीरी स्थिति के द्वारा जो हमें प्रभु मिलन का जो सुख है, ये सुख मिलेगा। और जिसको ये सुख मिलता है, बाकी सब बातें ना वो आत्मा कोई प्रभाव में आएंगी, जैसे कहा ना, जो अशरीरी स्थिति में रहता है उसकी बुद्धि कहीं भी ना अटकेगी, ना लटकेगी, ना चटकेगी, कहीं भी वो अटक नहीं जाता, ना वस्तु, ना व्यक्ति, ना वैभव। वही अटक जाता है जो देह भान में है। और जहां कहीं अटक गया वो योग कैसे लगाएगा? जहां बुद्धि को कई प्रभाव में आ गया, एक बाबा के सिवाय हमारे बुद्धि में कोई भी बातों का प्रभाव ना पड़े। और जिन्होंने अपने बुद्धि को सभी बातों के प्रभाव से मुक्त रखा है वही राजा है। अगर हम कोई किसी व्यक्ति के प्रभाव में आ जाते हैं, कोई वस्तु के प्रभाव में आ जाते हैं, हमारी बुद्धि उसमें बंध जाती है, प्रभाव में आना वाला राजा नहीं है। आज कईयों की यह भी एक समस्या है, न चाहते हुए भी हम कोई के प्रभाव में आ जाते हैं। क्यों आ गए? क्योंकि अशरीरी स्थिति नहीं है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये तपस्या करो, ये पुरुषार्थ करो, ताकि आप प्रभाव से मुक्त बनेंगे। और जो सारा दिन कोई भी बातों के प्रभाव में नहीं आता वो फिर योग का अभ्यास कर सकता है। इसीलिए अगर मुझे स्वराज्य अधिकारी बनना है, इंद्रियों का राजा बनना है, और जिस इंद्रियों के राज्य अधिकारी के द्वारा भविष्य का राजा बनना है, इसके लिए अशरीरी स्थिति की तपस्या, यह अशरीरी स्थिति का पुरुषार्थ जरूरी है। इसके साथ साथ कईयों को समस्या आती है, कभी कभी अगर किसी ने मान नहीं दिया, किसी ने अपमान किया, किसी ने रिगार्ड रिस्पेक्ट नहीं दिया, ऐसी बातों में भी व्यर्थ संकल्प चलते हैं। ये व्यर्थ संकल्प क्यों चलते हैं? उसका कारण भी देहभान। जो देहाभिमानी स्थिति में रहता है वो निरहंकारी है, और निरहंकारी वाला उसको कोई भी प्रकार की फीलिंग नहीं आती, वो हर निगेटिव बातों को क्या बनाएगा? पॉजिटिव बनाएगा। कारणों का निवारण कर सकता है, समस्या का समाधान कर सकता है। और जो देह भान में आता है, जो देह भान में है, देह भान में रहने वाला उसको अपमान की फीलिंग होती है, और जिसको अपमान की फीलिंग होती है उसके मन में निगेटिव विचार बड़े फास्ट में चलते हैं। और जिसके मन में निगेटिव विचार चलते हैं वो योग का अभ्यास कैसे कर सकता है? आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है तो पानी कैसा चाहिए? स्थिर चाहिए। परमधाम के परमात्मा को अगर अपने मन में देखना है तो मन की स्थिरता चाहिए, विचारों की स्थिरता चाहिए। जिसके विचारों की स्थिरता है वही परमात्मा को अपने मन में देख सकता है, मन रूपी टीवी में। अगर मन में निगेटिव विचार है, और क्यों है? देह भान के कारण अपमान की फीलिंग हुई, विचार निगेटिव चले। और जिसके मन में निगेटिव विचार चलते हैं उसकी बुद्धि अस्वच्छ बनती है। निगेटिव विचार बार बार चलने से किसी व्यक्ति के प्रति चले, किसी व्यक्ति ने मुझे विघ्न डाला, समस्या निर्माण की, उस व्यक्ति के प्रति निगेटिव विचार चलते 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 एक दिन आएगा उसे घृणा निर्माण होगी, उसे नफरत निर्माण होगी, उसे किनारा करेंगे, उसके प्रति गुस्सा आएगा, फिर ऐसे व्यक्ति के प्रति ना शुभ भावना देंगे, ना उसकी को बातों को माफ करेंगे, कहेंगे इसको माफ मैं कभी नहीं कर सकता हूं, इसने मेरे लिए क्या क्या किया है। तो अगर ऐसी निगेटिव बातें दिल में हैं, बुद्धि में हैं, तो ऐसे बुद्धि से जब योग में बैठते हैं तो परमधाम का विजन, परमधाम का दृश्य स्पष्ट नहीं दिखेगा। परम धाम को देखने के लिए, बाबा को देखने के लिए बुद्धि बड़ी स्वच्छ चाहिए। एक व्यक्ति के प्रति भी मेरी भावनाएं निगेटिव ना हो, भले उसने मेरे लिए कुछ भी किया है, भले मेरे लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, लेकिन तो भी मेरी भावना उसके लिए पॉजिटिव। और वो तब संभव है जब अशरीरी स्थिति में रहेंगे। अगर देह भान है उस व्यक्ति को हम ना क्षमा कर सकेंगे, ना उसके प्रति दिल में शुभ भावना निकलेगी। तो ये अशुभ भावना क्यों निकलते हैं जिसके अंदर देह भान है? इसलिए बाबा कहते बच्चे, ये अशरीरी की मेहनत करो ताकि जो भी जीवन में ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, समस्या आते हैं, जो समस्या निर्माण करता है उसके प्रति दिल में शुभ भावना रहेगी, उसको आप दुआएं दे सकेंगे। और जो दुआएं देता है उन बातों को भूल जाता है, वही हल्का बन सकता है, उसकी वृत्ति भी हल्की होगी। वो सदा मन बुद्धि भी उसकी हल्की होगी। अगर बुद्धि मन भारी है, भारी मन कैसा बाबा का चिंतन करेगा? ऊपर जाएगा ही नहीं। पहली तो बात, सारा दिन देह भान के कारण किसी ने अपमान किया है उसके प्रति मेरी सोच सोच करके मन भारी बना है, और शाम को योग में बैठा हूं, मन क्या कहता, जाओ परम धाम में। भारी मन ऊपर कैसे जाएगा? एक लोहे का मन लेकर के ऊपर फेंको, जाएगा? तो फिर मन नहीं जाता। और जब योग में बैठे हैं तो बुद्धि के सामने कितना भी कोशिश कर रहा हो परम धाम को देखने का, नहीं दिखाई पड़ रहा है। बुद्धि भटकती है, मन भटकता है। अगर मन बुद्धि परम धाम में नहीं गई तो आत्मा की चार्जिंग कैसी होगी, कैसा योग का अनुभव होगा? तो ये देह भान के कारण आज हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, उस प्रॉब्लम का कारण है। और इसके लिए हम दूसरे को दोषी बनाते हैं, क्योंकि वो उस व्यक्ति से आप किनारा नहीं कर सकते, रहना तो वही है, क्योंकि उसके साथ का आपका पिछले जन्म का कार्मिक अकाउंट है, उत्सुक तो करना ही है। तो उसके लिए, उसके साथ रहने के लिए रह करके भी आपके विचार अच्छे चले, इसके लिए अशरीरी बनकर के उसके साथ व्यवहार करो, तो उसकी हर बातें आपको पॉजिटिव लगेगी। अगर देह भान है तो उसका हंसना भी आपके लिए चुभेगा, वो हंस भी रहे तो लगेगा मेरे को देख करके जरूर हंस रहे, वो किसी से बात भी करता लगेगा मेरी बात जरूर कर रहे हैं। मिस्टर डाउट मिसअंडरस्टैंडिंग, देह भान में रहने वाला मिस्टर डाउट और मिसअंडरस्टैंडिंग में रहता है, शंकाएं और कुशंकाएं, बातें तो कुछ नहीं होती, लेकिन देह भान वाला सोच सोच करके उन बातों को बड़ा बनाता है, समस्या बनाता। फिर कहते हैं मेरे जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, मेरे जीवन में बहुत सारी समस्या है, ये प्रॉब्लम क्यों आए? देह भान के कारण आए हैं। इसीलिए ऐसे अगर प्रॉब्लम में रह करके भी अगर आपको सेफ रहना है, उमंग उत्साह में रहना है, पुरुषार्थ करना है, इसके लिए अशरीरी का अभ्यास। और क्या प्रॉब्लम्स? आज कई कहते हैं मुझे शक्तियां और गुण साथ ही नहीं देते हैं, और जब कोई समस्या आते हैं सहन शक्ति आती नहीं मेरे पास, कोई गुण मुझे साथ ही नहीं देता। ये गुण और शक्तियां साथ क्यों नहीं देती? जो देह भान में रहता है उसके साथ में गुण और शक्तियां नहीं रहती। अगर मेरे आसपास गुण और शक्तियां रहे, इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अशरीरी स्थिति के सिंहासन पर बैठना पड़ेगा। जो अशरीरी स्थिति में रहता है उसके इर्द गिर्द में शक्तियां और गुण रहते हैं, और जिसके जीवन में गुण और शक्तियां रहती हैं उसके जीवन में समस्या आएगी नहीं। और संगम युग में जिसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां रहेगी वो भविष्य का राजा है। लोग मुझे साथ दे या ना दे, लेकिन ये गुण और शक्तियां मेरे चारों तरफ रहे हैं। बस वो व्यक्ति एक दिन आएगा वो चमक जाता है, एक दिन आएगा उसको सफलता मिल जाती है। लेकिन ये गुण और शक्तियां कब साथ देंगी? जितना आप अशरीरी रहेंगे, जितना विधेय स्थिति में रहेंगे, आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे, गुण और शक्ति आपके साथ में रहेंगी। अशरीरी स्थिति ये पुरुषार्थ है, बीज है, और जिसने ये बीज बोए हैं उसके जीवन में दैवी गुण और दैवी शक्तियां ये उसके फल है। मैंने बीज बोया ही नहीं, मैंने इसका अभ्यास किया ही नहीं, तो गुण और शक्ति के फल कैसे मिलेंगे? इसीलिए अगर गुण और शक्तियों का अनुभव करना है, इसका साथ लेना है, यह अशरीरी स्थिति का पुरुषार्थ जरूरी है। और सबसे बड़ी शक्ति है सहन शक्ति। जो अशरीरी की मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, सबसे पहली शक्ति आएगी उसके पास सहन शक्ति। क्यों आएगी? क्योंकि अशरीरी स्थिति में रहने वाला निगेटिव को पॉजिटिव में लाएगा, कारणों का निवारण करेगा, समस्याओं का समाधान करेगा। उसके जीवन में कुछ भी व्यर्थ संकल्प नहीं चलते। और जो ऐसा अशरीरी रह करके कारणों का निवारण, समस्या का समाधान करता है, वो सहनशील बनता है ऑटोमेटिकली। और जो सहन करता है उसके साथ में बाकी जो सात शक्ति है वो ऑटोमेटिकली आएगी। सहन शक्ति आई, बाकी सात शक्ति आएगी। और जब सात अष्ट शक्ति आएगी तो शक्तियों के बच्चे हैं दैवी गुण। दैवी गुण शक्तियों के बच्चे हैं। जिसके पास सहन शक्ति आई उसके पास शांति, एकाग्रता, एकरस और अंतर्मुखता, ये चार गुण आएंगे। मां है तो बच्चे भी आएंगे। तो इसी तरह अगर अष्ट शक्ति है उसके साथ साथ ये चार चार पांच पांच बच्चे होंगे, आठ चौक बत्तीस, बत्तीस गुण आएंगे। और जिसके साथ में ये बत्तीस गुण है, अष्ट शक्ति है, वो कमजोर है, वो मास्टर सर्वशक्तिवान है। और जो मास्टर सर्वशक्तिवान है उसके पास माया क्या आ सकती है? नहीं आ सकती। तो ऐसे समस्या में भी रहते हो भी वो सदा हर्षित मुख रहेगा, सदा संतुष्ट रहेगा। इसीलिए अशरीरी स्थिति की तपस्या, इस अशरीरी का अनुभव। इसी तरह जीवन में आने वाले विभिन्न समस्याओं का समाधान इलाज है अशरीरी स्थिति। इसीलिए अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम्स है, कोई जीवन में समस्या है, इसका मतलब है अशरीरी स्थिति का पुरुषार्थ कमी है। तो हमें ये पुरुषार्थ करना है, बताए ना, चाहे संस्कार की समस्या, चाहे योग की समस्या, चाहे किसी के साथ किस भाव स्वभाव संस्कार की समस्या, चाहे दैवी गुण दैवी शक्तियां नहीं साथ देती उसकी समस्या, चाहे प्राकृतिक समस्या। इतना ही नहीं, शरीर भी अगर दर्द, शरीर में कुछ दर्द होता है, शरीर की तकलीफ है, उस तकलीफ में भी आप अगर अशरीरी है वो तकलीफ में आपको कोई इतना तकलीफ नहीं होगी। सहज आप उस प्राकृतिक समस्या में भी आप, गर्मी बहुत है, बहुत सर्दी है, जो देह भान में है उसके संकल्प चलेंगे, हाय बहुत सर्दी है, हाय बहुत गर्मी है। इसलिए कहते हैं ना, जो योगी होता है मान अपमान निंदा स्तुति सर्दी गर्मी सब में कौन योगी? जो अशरीरी स्थिति में है। इसलिए सभी समस्याओं का समाधान यह अशरीरी स्थिति, इसका पुरुषार्थ करना है। लेकिन ये अशरीरी अवस्था हमारी नेचुरल बनी रहे उसके लिए चार पांच बातें, इतनी महत्वपूर्ण ये स्थिति है, तो ये स्थिति मेरी नेचुरल बनी रहे उसके लिए कुछ चार पांच बातें जिनका हमें अभ्यास करना है। अशरीरी स्थिति ऐसी नहीं आएंगी, कुछ बातों का रिजल्ट है अशरीरी स्थिति। सबसे पहली बात है अशरीरी स्थिति में रहने के लिए व्यर्थों से मुक्त। जिसने जो रोज मुरली सुनता है और मुरली सुन करके जीवन में आने वाले जो प्रॉब्लम्स है उस समस्याओं का समाधान करता है, वो अपने संकल्प चलने नहीं देता, वही फिर उसकी शक्तियां बच जाते, गुण बच जाते हैं, शक्ति बच जाते हैं। और जिसकी ये शक्तियां बचती है, एनर्जी बचती है, उस एनर्जी का नाम है अशरीर स्थिति। अगर हमने मुरली सुनी नहीं या मुरली सुनी लेकिन फिर भी अगर जीवन में कोई प्रॉब्लम्स आया, उस प्रॉब्लम का चिंतन किया, व्यर्थ चिंतन किया, जो व्यर्थ चिंतन करता है, जिसके संकल्प निगेटिव चलते सारा दिन, वो अशरीरी स्थिति में नहीं रह सकता। इसीलिए अगर मुझे अशरीरी स्थिति में रहना है, अपने संकल्प को बचाना है, अपने संकल्प को कम से कम चलाना है, अपने संकल्प को पॉजिटिव चलाना है। ये मेरे संकल्प पॉजिटिव चले, कम चले, उसके लिए नॉलेजफुल स्थिति चाहिए, ज्ञान की गहराई, चाहे कर्मों की गुही गति का ज्ञान, चाहे निगेटिव बातों को पॉजिटिव बनाने का ज्ञान, जो ज्ञान की गहराई जिसके पास है वही व्यर्थों से मुक्त है, और जो व्यर्थों से मुक्त है वही अशरीरी स्थिति का अनुभव कर सकता है। इसलिए अगर मुझे अशरीरी का अनुभव करना है, सारा दिन मुझे व्यर्थों से मुक्त बनना है। इसलिए बाबा ने कई दिनों से, बाबा ने कहा ना, अपने मन को दिनचर्या दो, मन की दिनचर्या बना दो, और मन को क्या करो, कोई ना कोई बातों में बिजी रखो। अगर मन व्यर्थों में है, अशरीरी स्थिति नहीं, तो इसलिए व्यर्थों से मुक्त है। दूसरी बात है, जो योग के समय बैठ करके यथार्थ योग करता है, यथार्थ योग करता है, विधि से योग करता है, वही योग के बाद अशरीरी बन सकता है। अगर हमने ऐसा बैठ तो गए लेकिन अटेंशन नहीं कि मन कहां गया, बुद्धि कहां गई, या नेमिनाथ बन करके हम आकर के बैठ तो गए लेकिन बैठने के बाद मन कहां है, बुद्धि कहां है, अगर इसकी चेकिंग नहीं किया, विधि से योग नहीं किया, यथार्थ योग नहीं किया, जो यथार्थ योग नहीं करता वो अशरीरी नहीं बन सकता। यथार्थ योग अर्थात बुद्धि का काम है विजन। अगर योग में बुद्धि का प्रयोग किया ही नहीं मैंने, केवल बैठ करके बाबा का चिंतन किया, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, मिटे बाबा, जो भी जैसे कुछ बातें हमें कमेंट्री में बताई, उसका केवल मन ने चिंतन किया लेकिन बुद्धि ने उसका अनुभव नहीं किया, तो फिर वो सारा दिन अशरीरी स्थिति में नहीं रह सकता। क्योंकि क्या होता है, जब सारा दिन बुद्धि के ऊपर कोई ना कोई बातों का प्रभाव होता है, और उसी प्रभाव के साथ हम यहां करके योग में बैठ जाते हैं, और जब योग में बैठ गए, योग में बैठने के बाद फिर क्या करते हैं, बुद्धि कहां है और कहां लगाना है, बुद्धि को नहीं लगाते, सीधा आकर के मन को विचार देते हैं, मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं शक्ति स्वरूप हूं, मन को विचार दिया, तो मन को विचार देने का काम पूरा हो गया, या मन के संकल्प देना काम बंद करेंगे, तो जिस जहां बुद्धि प्रभाव में है, जिस बातों का बुद्धि के ऊपर प्रभाव है, उसका चित्र तो बुद्धि के सामने है, फिर उसके विचार चलना शुरू हो जाते हैं, फिर कुछ समय के बाद फिर याद आता है, मैं तो योग में बैठा हूं, ये क्या हो गया, फिर कहेंगे मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं शक्ति स्वरूप हूं, फिर कुछ समय के बाद फिर विचार देना बंद करेंगे, तो जहां बुद्धि प्रभाव में गई है उसके फिर विचार चलेंगे, और वो यथार्थ योग न होने के कारण फिर कहते पता नहीं सारा दिन हम तो अशरीरी नहीं रह पाते। तो इसलिए हम जब भी योग अभ्यास करते हैं उसको यथार्थ करना है। यथार्थ अर्थात जब भी योग में बैठेंगे तो सबसे पहले आपको अव्यक्त वतन में जाना है, तो पहले अव्यक्त वतन का अपने बुद्धिरूपी नेत्र के सामने, बुद्धिरूपी कैमरे के सामने वो विजन बनाए। आपको बुद्धि के सामने स्पष्ट अव्यक्त वतन देखने का प्रयास करें, या परमधाम में जाना है तो परमधाम का विजन बनाए, और बुद्धि वो विजन देख रहे हैं और फिर मन उसके बारे में सोच रहे हैं। बुद्धि भी वहां है और मन भी वहां है, और तब उस योग से आपको शक्ति मिलेगी, बल मिलेगा। जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं दोनों भी तारे डालते हैं, ऐसा नहीं कि एक तार डाल दी दूसरी बाहर आए। अगर एक डालने से चार्जिंग नहीं होगा मोबाइल, इसी तरह आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए ये मन और बुद्धि दो तारे हैं, और ये दोनों भी तारे जब बाबा के साथ जुड़ जाती हैं, बुद्धि भी जुड़ जाते हैं और मन भी जुड़ जाता है, और ऐसे योग से हमें बल मिलेगा, ताकत मिलेगी। केवल मन से वर्णन करने से नहीं मिलती, और ऐसा जो यथार्थ योग करता है एक घंटा आधा घंटा, वही सारा दिन अशरीरी रहता है, क्योंकि योग में उसने बाबा से ताकत ली, बल ली, और ये बल आपको सारा दिन अशरीरी स्थिति का अनुभव कराएगा, और फिर ऐसी समस्या आएंगी, उस समस्या से आप मुक्त रहेंगे। इसलिए हमें यथार्थ योग लगाने का प्रयास करना है, योग के समय अटेंशन रखना है, नहीं तो योग में बैठेंगे जैसे भक्ति मार्ग में किया, माला जप रहे राम राम राम, देखना भाई बिल्ली दूध ना पिए राम राम राम। अब यहां भी बैठेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, कोई थाली का आवाज आएगा, कहेंगे बेटा तुमने क्या गिराया, थोड़ा ध्यान से लेना। अब बच्चे ने थाली गिराई, वो सुनाई पड़ा, किसको सुनाई पड़ा, किसने सुना, कान ने सुना, कान नहीं सुनता, बुद्धि ने कानों के द्वारा सुना। तो बुद्धि कहां थी, यहां थी। जब बुद्धि यहां है तो मन कहां है, मन भी यहां है। जब मन यहां है, ध्यान यहां है, तो ऊपर कौन गया बाबा के पास, कोई नहीं गया, शरीर बाबा के कमरे में बैठा है, आंखें बाबा के फोटो को देख रहे, लेकिन मन बुद्धि नीचे भटक रहे। अगर ऐसा हम योग करते तो उसे जो बल मिलना चाहिए, जो बाबा के प्रति जो जिगरी प्यार होना चाहिए, वो नहीं होगा। तो ऐसे हमें योग में अटेंशन से योग करना है। इसलिए योग में बैठने के पहले बुद्धि को समझाओ, हे बुद्धि अभी आधा घंटे के लिए आपको परमधाम का निमंत्रण है, और उस शिव बाबा के तरफ जाकर के तुम्हें, वास्तव में बुद्धि वहां जाते हैं, मतलब बुद्धि जाती नहीं, लेकिन बुद्धि से वहां का विजन दिखता है। जैसे अभी एक कैमरा लगा हुआ है, तो कैमरा वहां दूर लगा हुआ है, और कैमरे के सामने जो चित्र है वो टीवी में क्या हो जाएगा, वही चित्र आता है। इस चित्र जिसका बुद्धिरूपी कैमरा जिस तरफ होगा, वही थॉट्स मन रूपी टीवी में चलते हैं। अब मैं योग में बैठा हूं, लेकिन मेरे थॉट्स कोई अलग हैं। जैसे पता ना, बच्चे ने थाली गिराया, उसके विचार चल रहे हैं, इसका मतलब कैमरा भी वही लगा हुआ है, बुद्धि भी वही लगी है। जहां हमारा ध्यान होगा वहां हमारा मन। इसलिए जो यथार्थ योग लगाता है मन बुद्धि, उसको ये योग से ताकत मिलते, बल मिलता है। ऐसे बल और ताकत के द्वारा वो सारा दिन अशरीरी स्थिति में रहता है। तो इसलिए यथार्थ योग, पहली बात बताई व्यर्थों से मुक्त, दूसरी बात बताई यथार्थ योग, तीसरी बात आए अगर मुझे अशरीरी स्थिति का अनुभव करना है तो सारा दिन सोमनों के अभ्यास में रहना है। सोमन अच्छा अच्छा चिंतन, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं कलप कलप की विजय आत्मा हूं, मुझे सर्वशक्तिवान स्वयं परमात्मा मिला है, मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है, तो इसी तरह का पॉजिटिव विचार, समर्थ संकल्प, जो समर्थ संकल्प चलाता है वही समर्थ बन जाता है, अशरीरी बन जाता है। अशरीरी अर्थात समर्थ। तो अगर मुझे अशरीरी बनना है तो मेरे संकल्प भी कैसे होंगे, समर्थ। अगर किसी दूसरे के बारे में चिंतन कर रहा है, वो ऐसा है, वो ऐसी है, झगमोई झगमोई बातें, वो समर्थ नहीं बन सकता, वो अशरीरी नहीं बन सकता। इसीलिए जिसका चिंतन समर्थ है वही अशरीरी बन सकता है। इसीलिए सारा दिन का मेरा चिंतन कैसा चाहिए? समर्थ। चौथी बात है, अगर अशरीरी का अनुभव करना है नेचुरल, तो आत्मा के जो सात गुण है, मूल गुण, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, सुख स्वरूप, पवित्र स्वरूप, ये जो सात गुण है आत्मा के, जितना इस गुणों के स्वरूप में रहेंगे उतना आत्माभिमानी बन सकते हैं। इस सात गुणों को हमें दिन प्रतिदिन बढ़ाते जाना है। जितना साइलेंस में रहेंगे, जितना साइलेंस को बना करके रखेंगे, आत्मा की एनर्जी बढ़ती है। जितना आप आनंद में रहेंगे, आत्मा की शक्ति बढ़ती है। जितना सुख स्वरूप में रहेंगे, दूसरों को भी सुख देंगे, आत्मा की शक्ति बढ़ेगी। खुद भी दुखी रहते हैं, दूसरों को भी दुख देते हैं, देह भान आता रहेगा, अशरीरी नहीं बनेंगे। तो केवल आत्मा हूं कहने से अशरीरी नहीं बनेंगे, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिकल बातें हैं। व्यर्थों से मुक्त, यथार्थ योग, सात स्वरूपों का अभ्यास, सोमानों के अभ्यास, पांचवी बात है अमृत वेला का योग। जो अमृत वेला विधि पूर्वक करता है, अटेंशन से करता है, जिसकी स्थूल आंखें खुली है, बुद्धि रूपी आंख भी खुली है, और उसके साथ साथ चिंतन भी समर्थ है, वही फिर सारा दिन अशरीरी बन सकता है। अमृत वाला उठे हैं, झुटका लगाते हुए योग लगा रहे हैं, या आंखें बंद है, मैं आत्मा हूं शांत स्वरूप, फिर एक झुटका लगा, फिर देखेंगे और पांच मिनट कम है, फिर कहेंगे मैं आत्मा हूं, फिर एक झुटका, ऐसा अगर योग लगाएंगे तो सारा दिन कैसे अशरीरी बनेंगे? अगर मेरी सारा दिन अशरीरी स्थिति नहीं बनती, इसका मतलब मेरी अमृत वेला ठीक नहीं हो रहे। जिसने अमृत वेला भले थोड़ा करो, लेकिन जागृत, किसके सामने बैठे हैं, सारी दुनिया नीचे सोई है और मैं बाबा के सामने हूं जो मेरे भाग्य में लिख रहे, ऐसे हमें समर्थ विचार करते हैं, उस समय अमृत वेला करना है। और जिसकी यह अमृत वेला अच्छी है, शक्तिशाली है, वही अशरीरी में रहता है। और अमृत वेला उसकी शक्तिशाली होते हैं जो रात को सोने से पहले अच्छे विचारों में सोता है, शक्तिशाली विचारों में सोता है। अमृत वेला क्यों कमजोर होते हैं? हम कहते हैं रात को सोने से पहले बिस्तर डाल लेंगे, गुड नाइट बाबा को कहेंगे और कई कमजोर विचार करके सोएंगे, कहेंगे तो अभी तो घड़ी में चार को पांच, कहेंगे अभी तो सारा दिन हमने दिन में रेस्ट नहीं किया, घर में बहुत मेहमान आए थे और अभी सर्दी भी बहुत ज्यादा है, पता नहीं मेरी अमृत वेला होगी या नहीं होगी, बाबा प्लीज मुझे चार बजे जरूर जगा देना, क्योंकि दोपहर को मैंने रेस्ट नहीं किया था, कल सवेरे उठना है, फिर बर्तन मांजना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे ऐसे विचार करते करते सो जाएंगे। फिर सोते सोते ये भी विचार आएंगे, इसने आज मुझे ऐसा बोला, इसने ऐसा बोला। और जब सवेरे उठेंगे, बाबा तो ओबेडिएंट सर्वेंट है, उठाएगा, लेकिन सवेरे उठते ही देखेंगे अभी घड़ी में चार को पांच मिनट कम है, थोड़ा और पांच मिनट के लिए सो जाते, क्योंकि दोपहर को मैंने रेस्ट नहीं किया था, घर में मेहमान आए थे, वही बात याद आएगी। तो पांच मिनट के लिए जाएंगे, सो जाएंगे, तो पांच बजे का पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, उठ भी गए तो भी थकान महसूस होगी, क्यों? सोने के पहले आप ऐसे सोए हैं। इसीलिए अगर मुझे अमृत वेला अच्छा करना है, सोने के पहले अव्यक्त वाणी पढ़ करके या अच्छी अवस्था में सो जाए, उसकी अमृत वेला अच्छी। अमृत वेले की तरफ अटेंशन, क्लास के पहले भी आकर के, चाहे सेंटर में चाहे मधुबन में, क्लास के पहले योग का टाइम रहता है। जो क्लास के पहले आकर के थोड़ा सा वो टीचर का रिस्पेक्ट रखता है, टीचर का आह्वान करता है, मुझे पढ़ाने के लिए कौन आ रहा है, कितनी ऊंची पढ़ाई है, इस नशे में बैठ करके योग करके जो मुरली सुनता है वो मुरली से भी बल मिलता है। बस सीधा आकर के मुरली में बैठ गए, वो मुरली में बुद्धि में भी नहीं बैठेगी, यहां से निकल गए मुरली की बातें भी भूल जाएगी, मुरली का सारा दिन चिंतन भी नहीं चलेगा, और शरीर कैसे बन सकते हैं। इसीलिए अगर मुझे मुरली से बल लेना है, इसके लिए अब थोड़ा सा योग करके फिर मुरली सुननी है। जो योग करके मुरली सुनता है उसको मुरली से बल मिलता है, वो सारा दिन अशरीरी में रह सकता है, और जो अशरीरी रहता है वो समस्या का समाधान करता है। इसीलिए हमें क्लास के पहले वाला नुमाशाम का योग, रात को सोने के पहले, बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल, इन बातों में अटेंशन रखते हैं तब अशरीरी बन सकते हैं। इसलिए अमृत वेले का योग, सारा दिन की दिनचर्या के योग का महत्व रखना है। लास्ट की बात है, अगर मुझे अशरीरी का अभ्यास करना है, अनुभव करना है, जिसे हमें जीवन की समस्या का समाधान करना है, इसके लिए पवित्रता की धारणा जरूरी है। पवित्रता के बिना अशरीरी अनुभव नहीं हो सकता। पवित्रता और अशरीरी स्थिति, इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। अगर मेरी अशरीरी स्थिति नहीं रहती, इसका मतलब मेरे पवित्रता में कोई प्रॉब्लम है। भले मैं स्थूल में ब्रह्मचारी हूं, लेकिन जरूर मनसा वाचा कुछ प्रॉब्लम है। बाबा ने यहां आने वालों को सबको क्यों कहा है कि बच्चे तुम्हें पवित्र जरूर बनना है। अगर नहीं, कई कई तो मुरली में बाबा ने यह भी कहा कि अगर पवित्र नहीं रहते तो नहीं आओ तो भी अच्छा है। क्यों ये बाबा ऐसे स्ट्रिक्ट बातें बोलते हैं? क्योंकि इसके बिना आत्मा अनुभूति नहीं हो सकती, अशरीरी नहीं बन सकते। क्यों पवित्रता का क्यों महत्व है? जैसे पहले जमाने में एक दिया आता था, दिया या उसको चिमनी भी बोलते हैं, वो त्रिकोणा सा रहता था, उसके अंदर केरोसिन डालते थे और बीच में बाती रहती थी, उसको माचिस लगाओ उसकी फ्लेम जलती रहती थी और वो फ्लेम से उजेरा मिलता था। वो फ्लेम क्यों जल रहे हैं? क्योंकि उस दिए के अंदर केरोसिन है और इसीलिए वो दीपक जल रहा है, वो फ्लेम जल रहे। इसी तरह अगर हम योग में बैठते हैं, अगर योगी के शरीर का आकार देखो, एक दिया है, योगी अर्थात एक दिया, एक चिमनी है, और ये चिमनी के अंदर पवित्रता ये तेल है। जैसे वो चिमनी के अंदर, दिए के अंदर तेल नहीं है और माचिस लगाऊं, जलेगी नहीं जलेगी। इसी तरह जिसके पास पवित्रता है, जिसने स्थूल में ब्रह्मचर्य का पालन किया है, मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता की धारणा है, वो ऑटोमेटिकली अशरीरी रहता है। उसको कहने की जरूरत नहीं, मैं आत्मा हूं आत्मा हूं। इसीलिए पवित्रता का रिजल्ट है अशरीरी स्थिति। इसीलिए पवित्रता के तरफ हमें क्या करना है? थोड़ा सा ध्यान देना है, मनसा वाचा कर्मणा और स्थूल में भी। और जिसके पास जितनी पवित्रता की ऊर्जा अधिक है, उतना उसकी अशरीरी स्थिति गहरी है। आंधी आए, तूफान आए, समस्या आए, उसमें वो हिलेगा नहीं। उसका दिया, उसकी फ्लेम अगर हिलती है, इसका मतलब पवित्रता की धारणा की कमी है, क्योंकि उससे सुख मिल रहा है। इसीलिए हमें पवित्रता की धारणा की तरफ अटेंगे, और केवल पवित्र रहना इतना ही नहीं, लेकिन उस ऊर्जा को हमें योग करके आत्मा तक पहुंचाना। बाबा क्यों कहते बच्चे मन बुद्धि मेरे में लगाओ? क्योंकि जितना मन बुद्धि बाबा में लगाते हैं, ये शरीर में पवित्रता जो है वो आत्मा तक पहुंचते हैं। जैसे उस दिए के अंदर तेल है लेकिन बीच में बाती नहीं है, माचिस लगाओ वो फ्लेम जलेगी? तेल कैसा जाता है वहां तक, फ्लेम तक? वो बाती के थ्रू जाता है। इसी तरह जो स्मृति में रहते हैं, जिसकी मन बुद्धि बाबा में है, मन ऊपर लगा हुआ है, बुद्धि ऊपर लगी है, वो ऊर्जा ऊपर चलती है, और ये ऊर्जा आत्मा तक आने से आत्मा की फ्लेम जलती है, अर्थात वो निराकारी स्थिति में रहता है। इसको आध्यात्मिक भाषा में कहते हैं ऊर्ध्वगामी। और जिसका ध्यान, जिसका मन इस दुनिया में कोई व्यक्ति की तरफ है, वस्तु की तरफ है, उसकी ऊर्जा नीचे चलती है, उसको आध्यात्मिक भाषा में कहते हैं अधोगामी, ऊर्ध्वगामी, अधोगामी। इसीलिए अगर मुझे अशरीरी का अनुभव करना है, पवित्रता और साथ में योग, केवल पवित्र रहने से नहीं है, लेकिन साथ में मुझे मन बुद्धि को ऊपर बार बार लगाना है, ऊपर लगाने से वो अशरीरी का अनुभव होगा। तो इस तरह से हमारे जीवन में बहुत सारी समस्या आती है, उसका कारण है देहभान, और उन समस्याओं का निराकरण है, कारणों का निवारण है अशरीरी स्थिति। कौन सी समस्या आती है, और हर एक कोई ना कोई किसके अंदर कुछ ना कुछ समस्या जरूर है। कहते हैं भाई और सब कुछ ठीक है, फिर भी मेरा इसके साथ बनता नहीं, या ऐसा होता है वैसा होता है, या ऐसा करता है, ये सब क्यों संकल्प चल रहे? क्योंकि मेरा देहाभिमान, मेरे देहाभिमान के कारण मुझे उसके अंदर की कमी दिखाई पड़ रही है। मैं देहाभिमान होने के कारण मैं उसके निगेटिव बातों को पॉजिटिव बना नहीं पा रहा हूं, उसे हल्के नहीं बन पा रहा हूं, फिर मैं चाहे कितना भी किसको बताए तो बताने से भी नहीं होगा। इसीलिए मुझे क्या करना है, अशरीरी बनना है। और वो अशरीरी कैसे बने उसके लिए भी युक्ति बताई। अशरीरी बनने के लिए जैसे पहली बताई, सारा दिन व्यर्थों से मुक्त, और व्यर्थों से मुक्त बनने के लिए कर्मों की गहराई का ज्ञान, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है ये ज्ञान, निगेटिव को पॉजिटिव, जीवन में जो होता है सब अच्छा होता है, जब बाबा कह रहा अच्छा होता है फिर भी मैं संकल्प क्यों चलाऊं, ये ड्रामा का ज्ञान। ड्रामा हम तो चार मां के बच्चे हैं, मां कितनी है, चार। तो जो इस स्थिति में रहता है वो व्यर्थों से मुक्त है, और जो व्यर्थों से मुक्त है उसकी एनर्जी बच जाते हैं, और जिसे वो अशरीरी स्थिति में रह सकता है। इसीलिए वर्तमान समय हमें इस अशरीरी स्थिति के गहराई में जाने की जरूरत है, और इससे ही हम स्वराज्याधिकारी बन सकेंगे, इससे ही हम अपने संस्कारों को परिवर्तन कर सकते हैं, भाव स्वभाव संस्कार की समस्या का समाधान कर सकते हैं, हम अपने अंदर की जो वृत्ति दृष्टि कभी चंचल हो जाते हैं उसके ऊपर जीत प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में दैवी गुण और दैवी शक्तियों की अनुभूति कर सकते हैं, इतना ही नहीं प्रभु मिलन का आनंद ले सकते हैं, कर्मयोगी बन सकते हैं। इसीलिए जीवन की सभी समस्या का कारण है देहभान। देहभान सबसे बड़ा विकार है, देहभान माया का गेट है। काम आ जाता है या क्रोध आ जाता है, वो काम क्रोध छोटे हैं, उससे भी बड़ा है देहभान। देहभान के ऊपर, देहभान को खत्म करेंगे तो बाकी छोटी छोटी बातें नहीं आएंगी, ये ईर्ष्या घृणा नफरत ये सब क्यों आते हैं, देहभान के कारण। इसीलिए बाबा कहते बच्चे देही अभिमान में बनो, ये अशरीरी बनो। तो इसीलिए मुझे क्या करना है, बार बार इसका अभ्यास करना है, और इसी अभ्यास से हमारे जीवन की समस्या का हम समाधान कर सकेंगे और ब्राह्मण जीवन का आनंद ले सकेंगे। इसलिए वर्तमान समय का यही हमारा पुरुषार्थ है, और इस पुरुषार्थ का प्रारब्ध है भविष्य की प्राप्ति। जिसने जितना यह पुरुषार्थ किया है उतना उसको ऊंचा पद मिलता है, बाकी और कोई पुरुषार्थ नहीं, ये पुरुषार्थ। बाबा कहते हैं मैं कोई और मेहनत नहीं बताता हूं, बस इतनी मेहनत करो, अपने आप को आत्मा समझो और मुझे याद करो। ये दो बातें हर मुरली में बाबा की आती हैं। तो इसलिए इस अशरीरी के अनुभव जो करता है, जिसने एक बार ये अशरीरी स्थिति का अभ्यास किया, अनुभव किया, वो कोई भी बातों के प्रभाव में नहीं आएगा, वो समस्या का समाधान करेगा, वो बात ज्यादा झंझटों में नहीं जाएगा, संकल्प विकल्प बोल वृत्ति। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये अभ्यास करो, ठीक है, यही हमारा पुरुषार्थ है। और इसलिए इस अभी नए साल में 2013 में, तो 2013 में हमें और कोई नहीं, ये धुन लगानी है, ये एक धुन में लगाने, और जितना ये अशरीरी रहेंगे उतना फिर 13 में 13 हो जाएगा। ठीक है, ओम शांति।